नमस्कार, मैं रविश कुमार। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोग भोजन और दवा पर कम खर्च करने लगे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शाखा के एक अध्ययन के मुताबिक लोगों के कुल खर्चे में पेट्रोल पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है और इसके उलट महीने का राशन काफी कम हो गया है। महंगाई के इस मुश्किल दौर को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? देश को पिछले साल की तरह सुशांत सिंह राजपूत के जैसे फर्जी मुद्दे की तलाश है, जिसे लेकर गोदी मीडिया 3 महीने तक बहस करता रहे। जब तक ऐसा मुद्दा नहीं आ जाता है, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार तो कभी आबादी नियंत्रण से काम चलाया जा रहा है। उधर बिना मास्क और सामाजिक दूरी के कांग्रेसी सड़क पर उतरे जा रहे हैं कि किसी तरह महंगाई पर बात हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बात हो। एक तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करने का तरीका भी उन तकलीफों की सही तस्वीर पेश नहीं करता है जिसका सामना आम लोग कर रहे हैं। जीडीपी में घरेलू बचत का हिस्सा घटता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दिसंबर की तिमाही में घरेलू बचत जीडीपी का 8.2% हो गई, उसके पहले की तिमाही में 21% और 10% हो गई थी। क्या आपने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर नए पेट्रोलियम मंत्री को लगातार बोलते सुना है? जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले सांसद को क्या महंगाई और बेरोजगारी से आई घर घर में तबाही नहीं दिख रही है? क्या आपने बढ़ती महंगाई पर प्रधानमंत्री को विस्तार से बोलते सुना है? इतने सारे ज्वलंत मुद्दों के रहते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपने मन की बात के लिए सुझाव मांगा है कि वे किस टॉपिक पर बात करें। इसके जवाब में एमएल यादव ने ट्वीट किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर कुछ बोलें, बहुत जरूरी हो गया है। अब हम जैसे जमीनी कार्यकर्ता अब लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हरप्रीत लिखती हैं कि प्राइस हाइक इन पेट्रोल डीजल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, अ फ्यू टू स्टार्ट विथ। सौरभ शुक्ला लिखते हैं कि महंगाई पर कुछ विचार व्यक्त करिए, यह सुविधाजनक नहीं है लेकिन आम जन के मन की ये असली बात है। नीलोत्पल लिखते हैं कि सर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बिकते पीएसयू, यूपी की हिंसा, स्विस बैंकों में बढ़ते धन, किसी भी एक विषय पर कुछ प्रकाश डालें और बताएं कि नेहरू जी किस तरह से दोषी हैं। अजय कुमार सोनी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री के ट्वीट पर कि मन की बात में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर भी प्लीज शामिल कीजिए। क्या प्रधानमंत्री मन की बात में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और बेरोजगारी पर बात करेंगे? ये सवाल है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जैसे सरकार ने बात न करने का मन बना लिया है, उसकी जगह आबादी नियंत्रण का मसला लाया जा रहा है कि जनता रसोई और रोजगार की बात छोड़कर जनसंख्या पर बात करने लगे कि सरकार भी कितना करेगी, किया तो बहुत कुछ है लेकिन आबादी इतनी है कि कम पड़ गया है। चीन की आबादी भारत से अधिक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिश्तेदारों के तर्कों के हिसाब से चीन को भारत से भी गरीब होना था, जबकि चीन जीडीपी, आर्थिक तरक्की और जनजीवन के जीवन स्तर के मामले में भारत से कहीं आगे है। जब आप फेल हो जाते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे इस बार कठिन प्रश्न आए, कॉपी चेक करने वाला सख्त था, सबका ही रिजल्ट खराब आया है, टॉपर को भी कम नंबर है, आदि आदि। इसलिए भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। अब हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क, सीधा मेडिसिन स्क्वायर। प्रधानमंत्री को आप वहां बोलते हुए सुने और देखें कि भारत की आबादी समस्या नहीं है, एक विशाल संभावना है।
दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उस देश को क्या चाहिए? इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है? और तीसरी बात, डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है।
हम आपको हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के कई बयान सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वे अनेक बार कहते हुए पाए जाएंगे कि भारत की आबादी समस्या नहीं, संभावना है। भले सरकार यह न बताती हो कि कितने नौजवानों के पास रोजगार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार बताते हुए मिलेंगे कि भारत की आबादी का 65% युवा है और ये भारत की ताकत है। आज आईटी सेल और बेरोजगारी ने उस युवा ताकत को खोखला कर दिया है। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर सरकार सोच समझकर काम करेगी तभी आबादी के साथ न्याय कर पाएगी। यानी जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इस आबादी को कैसे ताकत में बदलती है।
साथियों, आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में डिसरप्शंस और डिसकंटेंट के दौर में हम वर्तमान के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे का रास्ता बनाना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। जब हम सभी देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ हम न्याय कर पाएंगे।
मार्च 2018 में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 125 करोड़ की मानव शक्ति वाला देश अगर ठान ले तो दुनिया की कोई चुनौती मुश्किल नहीं है।
दुनिया की कोई भी चुनौती इस देश के 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति और श्रम शक्ति से कतई बड़ी नहीं है। जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की हो, जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का इतना विस्तार हो, उस देश के लोग ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
अगर कुछ भी असंभव नहीं है तो फिर कितनों को रोजगार मिला है 7 साल में, यह बताना असंभव क्यों हो गया है? पेट्रोल डीजल पर बात करना असंभव क्यों हो गया है? 11 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुभारंभ के मौके पर भारत की आबादी के गुण गाते हैं। वैसे चौथी औद्योगिक क्रांति का पता नहीं चल पा रहा है, आपको पता हो तो बताइएगा मुझे भी।
मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अकल्पनीय योगदान भारत का होगा। हमारी विविधता, हमारी डेमोग्राफिक पोटेंशियल, फास्ट ग्रोइंग मार्केट साइज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन का ग्लोबल हब बनाने की क्षमता रखता है।
आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार 130 करोड़ कभी 125 करोड़ के सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, उन्हें समस्या नहीं बता रहे हैं। 28 फरवरी 2019 को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से भारत की आबादी को उसकी ताकत और संभावना बताते हैं।
साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी ऑन डिमांड, इसका डिविडेंड है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में हमें
साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना होगा।
डेमोग्राफिक डिविडेंड का यही मतलब हुआ कि भारत की आबादी ही उसके लिए अवसर है, उसका लाभांश है। 25 सितंबर 2019 को ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री भारत के विकास गाथा के 4 स्तंभों के बारे में बताते हैं। इसमें से एक स्तंभ है भारत की आबादी।
आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से, यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से।
16 जनवरी 2020 को IIM कोझिकोड में अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वहां बताते हैं कि आबादी अधिक होने के कारण ही भारत दुनिया में निवेश का आकर्षण बना हुआ है।
वी आर अ नेशन विद ए वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन। अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड मेक्स अस अ मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन इंडिया टूडे। अवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 2 decades ago एंड अवर स्टार्टअप इकोसिस्टम टूडे शोज द पावर ऑफ इंडिया यूथ।
हम प्रधानमंत्री के अनेक बयान सुना रहे हैं ताकि आप ठीक से समझ लें, और गिरिराज सिंह जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं और रवि किशन जो सांसद हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं वो भी जान लें कि प्रधानमंत्री इतने साल तक भारत की जनसंख्या को संभावना बताते रहे हैं और अब उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और सांसद इसके नियंत्रण की बात क्यों करने लगे हैं, ये आपको समझना है। पेट्रोल डीजल की बात क्यों नहीं हो रही है। 25 जून 2019 को संसद में भी आबादी का गुण गाते हैं, लेकिन उस मौके पर प्रधानमंत्री सवाल भी करते हैं कि क्या हम युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं। बहुत पहले स्किल इंडिया लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद ये सवाल कर रहे हैं।
आज दुनिया में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, देश के पास युवा शक्ति है, लेकिन क्या विश्व की आवश्यकता के अनुसार हम हमारे युवा को तैयार कर पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
तो क्या किया गया, युवाओं को कितना रोजगार दिया गया, यह बताने की आवश्यकता है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। स्किल इंडिया ने क्या किया, इस महीने में भी प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में कहते हुए पाए गए हैं कि आबादी संभावना है।
ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडियाज टेकड के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को अपना मार्गदर्शक कहते हैं, ठीक। मार्गदर्शक मोदी कहते हैं आबादी संभावना है, उनके मार्गदर्शन में चलने वाले योगी कहते हैं आबादी बोझ है।
पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके यहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
आबादी बढ़ने का संबंध गरीबी और अशिक्षा से है, लेकिन गरीबी और अशिक्षा का संबंध सरकार की नाकामी से है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सुनाना चाहते हैं, जो उन्होंने 15 अगस्त 2019 के दिन लाल किला से दिया। संभवतः पहली बार प्रधानमंत्री मोदी विस्तार से जनसंख्या विस्फोट का नाम लेते हुए उस पर बात करते हैं। तब भी कानून लाकर नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उन लोगों से सीखें जिनके परिवार छोटे हैं, जो ज्यादा सुख समृद्धि से रहते हैं।
मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें कि उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चढ़ गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है।
15 अगस्त 2019 के उस भाषण के बाद जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया सरकार बताए तो बेहतर है। 2016 में मोदी सरकार ने मिशन परिवार विकास लॉन्च किया था। इसके तहत देश के 146 जिलों में परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता का प्रसार करना था, जहां प्रजनन दर अधिक थी। सरकार बताए कि मिशन परिवार विकास का क्या हुआ, किसी को याद भी है या नहीं? अब हम देखते हैं कि 2018-19 में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था जिसके कारण 2019 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से जनसंख्या विस्फोट पर भाषण देते हैं। ...2018 के साल से और 2019 के लोकसभा चुनावों के बीच रोजगार के सवाल को लेकर नौजवान बेसब्र होने लग गए। देश भर में सरकारी भर्तियों में हो रही देरी को लेकर आंदोलन होने लगा। मार्च 2018 में दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं से त्रस्त नौजवानों ने लंबा आंदोलन चलाया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। बेरोजगारी का सवाल उठाकर भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मुद्दे का दबाव ही था कि प्रधानमंत्री से पूछा जाने लगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कलात्मक जवाब दिया कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। विरोधी दल के लोग पकौड़ा तलकर अपना रोष प्रकट करने लगे। उसी दौरान एक और खबर चर्चित हुई थी, याद दिला रहा हूँ फ्लैशबैक में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक थी। खबरें छपने लगी कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से रोका जा रहा है, जिसके विरोध में जेवी मीनाक्षी और आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पीसी मोहनन ने इस्तीफा दे दिया था।
इस सर्वे का जो लॉन्च हुआ था वो 2017-18 में किया गया फील्ड सर्वे, और 2017 जुलाई से लेकर 2018 जून तक ये सर्वे हुआ। ये पहला ऐसा सर्वे था जो हर साल होने वाला था, और दिसंबर 2018 में सर्वे को रिलीज किया जाना था, लेकिन सरकार ने वो रिलीज नहीं किया। उस समय के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चेयरमैन थे पीसी मोहनन, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, और फिर जनवरी में जाके उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, यह बोल के कि सरकार का कोई इरादा नहीं है ये आंकड़े निकालने का, और इन्होंने इसीलिए ही इस्तीफा दिया। जनवरी के अंत में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो यह स्पष्ट कर रहा था कि कैसे बेरोजगारी की दर 6.1 हो गई थी 2017-18 में, चुनाव से थोड़ी ही पहले ये आंकड़े आने थे, और ये 45 साल में सबसे ज़्यादा थे। सरकार ने इस न्यूज़ रिपोर्ट को डिनाई भी किया और बोला ये ड्राफ्ट है, और चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए। उसके बाद जब नई मंत्रिमंडल बनी और उन्होंने शपथ लिया, उसी दिन सरकार ने यह रिपोर्ट जारी करी पब्लिक में, और वह वही दिखाए, उस रिपोर्ट ने वही दिखाया जो हमारी रिपोर्ट कह रही थी कि बेरोजगारी की दरें 6.1 पे है 2017-18 में।
अमेरिका में रहने वाले किसी NRI अंकिल या दोस्त को वीडियो कॉल कीजिए, पूछिए कि वहां की सरकार कैसे हर महीने बता देती है कि इस महीने बेरोजगारों की संख्या इतनी है और कितनों को नौकरी मिली है। डिजिटल इंडिया करने वाली भारत सरकार क्यों नहीं बताती है? युवाओं को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि अभी तक आप कहते थे कि आबादी ही हमारी ताकत है, तो अब क्या हो गया कि कहने लगे कि आबादी ही हमारी कमजोरी है। तमाम आंकड़े कहते हैं कि भारत की आबादी 2011 से 21 के दशक में घटती जा रही है। जिन राज्यों में तरक्की हुई है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर काम हुआ है, वहां आबादी में कमी आई है। खुद उत्तर प्रदेश में आबादी के बढ़ने की दर आधी हो चुकी है और 2025 तक 2.1 पर आने की उम्मीद है। जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम और बेरोजगारी को छोड़ जनसंख्या नियंत्रण का मसला लाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को हवा दी गई, एक बैकग्राउंड तैयार है पहले से। जब भी काम का हिसाब पूछा जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रिटायर्ड रिश्तेदार यह तर्क देने लगते हैं कि आबादी बहुत। यह बात किसी को समझ में नहीं आती कि दो से अधिक बच्चा होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से मनाही है, तो विधायक और संसद का चुनाव लड़ने से क्यों नहीं? क्या आबादी पंचायत के सदस्यों के कारण बढ़ती है? यूपी सरकार कहती है कि दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार बताए कि कितने ऐसे युवा हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और सरकारी भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं? कितने ऐसे युवा हैं जिनके दो बच्चे हैं और भर्ती परीक्षा दे रहे हैं? क्या जिनके दो हैं उन्हें जल्दी नौकरी मिल रही है? तब तो जिनके एक भी नहीं है उन्हें पुलिस के अधिकारी गाली क्यों देते हैं? आज ही नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने पिछले साल मार्च की तिमाही और इस साल मार्च की तिमाही के आंकड़ों को लेकर बेरोजगारी को समझना चाहा है। उनका कहना है कि पिछले साल मार्च में महामारी शुरू हुई थी, लेकिन इस साल मार्च तक उसके एक साल हो गए थे। पहले महिलाओं ने नौकरियां गंवाई, लेकिन दूसरी लहर के दौर में पुरुषों ने ज्यादा नौकरी खोई है, जो अपने परिवार के लिए आय का एकमात्र जरिया थे। जिन लोगों को वापस नौकरी मिली भी है, उनकी सैलरी बहुत कम है। एक तरफ रोजगार मिलता हुआ दिखता है, लेकिन यह भी दिखता है कि पगार घट रहे हैं। महेश व्यास का कहना है कि इस बार नौकरी जाने से परिवारों में जो तबाही आई है, उसका अंदाजा आप केवल रूखे सूखे आंकड़ों से नहीं लगा सकते हैं।
पहली लहर में यदि एक साल का आंकड़ा देखें, तो जो जॉब लॉसेस हुए उसमें महिलाओं का जो जॉब लॉसेस की हिस्सेदारी है वो करीब 23% है। यदि यही आंकड़े हम शहरी महिलाओं का देखें तो ये समस्या और भी बड़ी नजर आती है। शहरी महिलाओं का जो योगदान है पूरे रोजगार में वो मात्र 3% है, लेकिन एक साल में, महामारी के एक साल में जो जॉब लॉसेस हुए उनमें इनका योगदान करीब करीब 40% है। ये समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन ये समस्या एक और रूप दिखाती है हमें। ये सेकेंड वेव में, महामारी का जो सेकेंड वेव है, इसमें जो हमारे नए आंकड़े आए हैं जो अप्रैल 2021 से जून 2021 में आए हैं, इसमें शहरी महिलाओं का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब नहीं दिख रहा है। अब प्रॉब्लम दिख रहा है अर्बन मेल्स का। जो अर्बन पुरुष है उनका जो जॉब लॉसेस है, उनकी हिस्सेदारी जो रोजगार में है वो करीब करीब 28% है। अप्रैल में जहां जॉब लॉसेस में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 26% थी, वो जून आते आते वो 30% होगी। हम ये मानते हैं कि जो अर्बन मेल्स हैं उनका जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है वो सुपीरियर है, और वो हाउसहोल्ड इनकम जो होता है उसमें लार्जली कंट्रीब्यूट करता है। यदि महिलाएं जो सेकेंडरी ब्रेड अर्नर्स होती हैं फैमिली में, उनकी नौकरी जाती है तो इनकम कम होता है, लेकिन जो प्राइमरी ब्रेड अर्नर अर्बन मेल है उनकी नौकरी जाती है तो यहां तो लाइवलीहुड का सवाल आ गया। यहां पे तो जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, फैमिली को कैसे आगे चलाना है, उसकी बात आ गई।
हिंदी प्रदेश के युवाओं को उलझाने के लिए मंदिर निर्माण और धारा 370 की तरह आबादी का टॉपिक भी उसी नेशनल सिलेबस के परिवार का है जिसकी बात मैं करता रहा हूं। इस बहस का प्रवेश द्वार इस तर्क से खुलता है कि आबादी को कम करने की कोशिश तो होनी चाहिए। बात तो सही है, इस टॉपिक से युवाओं का टाइम अच्छा कटेगा, वो खुश हो जाएंगे कि उनकी बेरोजगारी का कारण सरकार नहीं है, भारत की आबादी है। ब्रेक के बाद अनुराग द्वारी ने पिछले डेढ़ साल में 5 बार रिपोर्ट की है, लंबी कि भोपाल गैस कांड की विधवाओं को पेंशन नहीं दी जा रही है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 पेंशन देने का फैसला किया है, ऐलान हो गया है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च कर गैस कांड में मारे गए लोगों की याद में एक मेमोरियल भी बनाने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड में फैला 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाना चाहती है, यहाँ मेमोरियल बनाना चाहती है। गैस पीड़ितों का दावा है कि सरकार के गणित का ये कुल रासायनिक कचरे का बमुश्किल 0.5% हिस्सा है। उनका ये भी दावा है कि खुद आधिकारिक एजेंसियों को भूजल में 6 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मिले हैं जो 100 साल से ज्यादा अपनी विषाक्तता को बनाए रखते हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिट्टी में पारे की मात्रा सुरक्षित स्तरों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई थी, जो दिमाग, फेफड़े और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कैंसर कारक हैं।
17 वैज्ञानिक संस्थाओं में जिसमें CPCB, नीरी, NGRI, CSC जैसे संस्थान शामिल है, उनका ये कहना है कि कारखाने के अंदर एक वेयर हाउस में 337 मेट्रिक टन है, पर उसके अलावा 21 जगहों पर कारखाने के अंदर जहरीला कचरा दबा हुआ है जिसका आकलन आज तक नहीं हुआ है। फैक्ट्री के बाहर 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड पर लगभग 1.7 लाख टन जहरीला कचरा, टॉक्सिक स्लज पड़ा हुआ है जिसका आज तक आकलन नहीं हुआ है कि कितनी दूरी और कितनी गहराई तक ये है। 48 बस्तियां इस कचरे की वजह से प्रदूषित होती हैं और इस पे कोई बात नहीं होती कि कैसे इस कचरे को साफ किया जाए।
उधर प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री की 87 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 57 एकड़ में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। परिसर में बने शेड में करीब 137 मीट्रिक टन कचरा बैग में भरा रखा हुआ है। सरकार का कहना है कि कचरे को हटाने के बाद यहां मेमोरियल बनेगा। करीब 370 करोड़ रुपए की DPR तैयार है। यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ओपन थिएटर, कम्युनिटी हॉल भी होगा। हिरोशिमा की तर्ज पर बनने वाले स्मारक को दुनिया भर में भोपाल मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। मेमोरियल वॉक में कारखाने से रिसाव, अफरा तफरी और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखेंगी।
किसी तथ्यों के विरोध के कारण ही सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि गैस पीड़ितों को रोजगार दे सकती थी वो खंडहर पड़ी हुई है। ये कहीं भी समझदारी नहीं है कि हम लगभग 36 से 40 साल बाद तक इसी बात का रोना रोते रहें, और इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे, गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है। और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस जमीन पर रोजगार देना है तो वहां पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा।
2010 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया गैस राहत विभाग को गैस पीड़ितों के लिए दिया हुआ है। आज तक उस पैसे से एक भी गैस पीड़ित को कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे सिर्फ एक ही को फायदा होना है, वो है डाउ केमिकल कंपनी को। डाउ केमिकल कंपनी चाहती है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए और हमारी सरकारें पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक हैं।
सरकार वैसे गैस पीड़ितों को लेकर कितनी संवेदनशील है, उसे गैस पीड़ित विधवाओं के इस प्रदर्शन से समझें कि 5 दफे हमारे कैमरे पर वायदे, इन्हें कल्याणी बहने और खुद मुख्यमंत्री के ऐलान के 6 महीने बाद भी मात्र 1000 रुपए की पेंशन 18 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। जमीन पर खड़ा मेमोरियल दिख जाएगा लेकिन जमीन के अंदर पड़ा जहरीला कचरा नहीं, और यही होता आया है खासकर वोटों के बाजार में। जो दिखता है वही बिकता है। सरकार सबूत मांगती है, पीड़ित अपने अनुभव बांटते हैं। पीड़ितों का ये भी कहना है कि एक अपराधी कंपनी को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की कोशिश है ताकि मेमोरियल की नींव में उसके अपराध
दब जाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। उसका कारण है कि राज्य सरकार ने अपनी संख्या में संशोधन किया है। सरकार ने उन मौतों को आंकड़ों में शामिल किया है जिनकी गिनती उस वक्त नहीं हो सकी थी।
दूसरी लहर की पीक के दौरान जलती चिताओं और सरकारी मौत के आंकड़ों में अंतर की गुत्थी शायद अब सुलझती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीते 57 दिनों में 44,538 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 62% मौतें पुरानी हैं। मौत के आंकड़ों को छुपाने के आरोप के बीच महाराष्ट्र ने 17 मई से आंकड़ों को फिर से दुरुस्त करने का काम शुरू किया था। 17 मई से 31 मई तक 6,207 पुरानी मौतें रिपोर्ट हुई। रोजाना मौतों का आंकड़ा इससे अलग 7,651 रहा। जून महीने में 19,059 पुरानी मौतें तो रोज रिपोर्ट होने वाली मौतों का आंकड़ा 7,542 रहा और जुलाई में अब तक 12 दिनों में 2,317 पुरानी मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं तो 1,762 रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। यानी बीते 57 दिनों में 27,583 पुरानी मौतें तो 16,955 कोविड की रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रवक्ता का आरोप है कि महाराष्ट्र और देश में रिपोर्ट हो रही मौत के आंकड़ों में 10% गफलत हो सकती है।
आंकड़े अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे भारत में भी जो आंकड़ों में है उसमें कोई ज्यादा बारीकियां देखी नहीं जाती। जो भी ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से भी जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं वो दर्ज करने वाले लोगों को लगता है कि शायद ट्रेनिंग नहीं होता है या उसका महत्व उनको समझता नहीं, इसलिए जो भी है जो भी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं उसमें 10% गफला होता है, उसमें ये आंकड़े कम पाए जाते हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर में मामले फरवरी से ही बढ़ने शुरू हुए थे। मौतों का आंकड़ा रोजाना 900 से 1,000 के करीब अप्रैल महीने में दिखने लगा था। आंकड़ों में हो रहा सुधार दूसरी लहर के कहर को और भयानक तरीके से पेश करता है। इधर राज्य की कोविड डेथ ऑडिट कमेटी इन मौतों की स्टडी शुरू कर चुकी है ताकि पहली और दूसरी लहर की मौतों में वायरस के असर को समझा जा सके। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।